गुड मॉर्निंग। पहले मैं हमारी क्लासेस को थोड़ा रिपीट कराना चाहूंगी, जो पढ़ाई पढ़ी है ना आप सबने, सबको याद है। पहले दिन शिलू दीदी ने हम सबको लक्ष्य और लक्षण, इस भट्टी का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, छोटे छोटे लक्ष्य को रखते हुए उद्देश्य की पूर्ति करनी है। जब हम सब घर से निकले थे तो क्या संकल्प लेकर के निकले थे, बाबा के घर मधुबन पांडव भवन में हम जा रहे हैं, बाबा का हमें निमंत्रण मिला हुआ है, तो जितना समय हमें मिला बाबा के घर में सानिध्य में रहने का, उसका पूरा पूरा फायदा लिया सबने। सबका लक्ष्य स्पष्ट था, सबने लक्ष्य रखा, हम सब अभी संगम पे बाप समान बनना चाहते हैं, उसके लिए छोटे छोटे गोल्स को रखना पड़ेगा जो उसे अचीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे पहले दिन राजू भाई ने हम सबको क्या करने के लिए कहा, सफल करो सफलता पाओ। सफलता के लिए खास बहुत अच्छी बात कही, क्या कहा, एग्जाम्पल हमने दिया था, मुट्ठी खोलो तो हाथ में क्या आ जाएगा, बिना मुट्ठी के, बिना मुट्ठी खोले हाथ में स्वर्ग तो आएगा नहीं। स्वर्ग लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम सबको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, समय श्वास संकल्प शक्ति तन मन धन सबको सफल करने का ये समय है, तो सफलता को दिलाना। फिर हमारे डॉक्टर सरिता बेन जी ने स्वमानधारी ही सम्मानधारी, बाबा ने दो सप्ताह पहले पीओटी की रियलिटी रॉयल्टी एंड पर्सनालिटी बताया था। रियलिटी आदि अनादि स्वरूप समर्थ स्वरूप है, और रॉयल्टी बताया था स्वमानधारी ही सम्मानधारी, पर्सनालिटी प्रसन्नता और संतुष्टता बताई थी। तो तीनों पीओटी की रियलिटी को स्पष्ट करते हुए ये हमारी क्या है, पीओटी की एक रॉयल्टी है स्वमानधारी, जो स्वयं रहेगा उसी के अकॉर्डिंग, लाल चश्मा पहना होगा उसको लाल दिखाई देगा, जो जितने सोमान की सीट पे रखे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग दूसरे वाले को भी ये सम्मान देगा। वो खुद गिरा हुआ होगा तो दूसरों को भी क्या करेगा, उसी नजरिया से देखेगा, वैसे ही वो व्यवहार करेगा। इसलिए सोमान सवेरे से लेकर रात तक बाबा ने जो हमें सोमान दिए हैं उसकी माला, और शाम को कौन सी दीदी आए थे, संतोष दीदी ने बेहद की वैराग वृत्ति की बात बताई थी, है ना, क्योंकि इन दीदियों ने वो बेहद के वैराग को, बाबा के उस यज्ञ के साधारण स्वरूप को देखा है, बहुत सिंपल था। दादियां दीदियां सुनाती हैं जब ये लोग आए थे बहुत ही सिंपल, कहाँ बड़े बड़े खानदान की दादियां, लेकिन एकदम सहज सरल तरीके से इस यज्ञ को चलाया। इनके जीवन में भी वो वैराग वृत्ति, आज बहुत कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में वैराग वृत्ति को धारण करके आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। दो प्रकार की पर्सनालिटी संसार में रहते, एक है उपयोगवादी, एक है उपभोगवादी। हम संसार में उपयोग के लिए आए हैं या उपभोग के लिए आए हैं? किस लिए आए हम? उपयोगितावादी, जिसको ये बेहद की वैराग वृत्ति कहा गया। फिर शाम को किसी दूसरे दिन सवेरे हम सबने साइलेंस पावर, बहुत गहराई दीदी ने सुनाया था, मैंने तो दीदी से जाके पूछा, दीदी और इसको थोड़ा सब्जेक्ट्स रह गया था उस पर और क्लियरिंग में, मैंने कहा अगर इस पर डिटेल्स में हो तो यूट्यूब पे हम देखेंगे साइलेंस पावर कैसे है, शक्ति कैसे है। एक तरफ साइंस पावर, साइलेंस भी एक शक्ति है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, देखना ये कायर है, चुपचाप ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, ये चुप हो गया, माना क्या समझते चुप होना, कायरता समझते। वास्तव में कायर लोग तुरंत उगल लेते हैं, जिसके पास पावर होगी वही ब्रेक लगा पाएगा। चुप रहना, शांत रहना, अंतर्मुख रहना, ये ताकतवान शक्तिशाली व्यक्ति की निशानी है। कमजोर तो तुरंत उगल लेता, उसके अंदर इतना सहन करने की समाने की ताकत नहीं रहती। तो यहाँ बाबा ने हम सबको साइलेंस को पावर के रूप में, एक शक्ति है वो, हमारा एक टूल है ये, तो ये शांति की शक्ति को धारण करके अस्त्र है, ये हमारा शस्त्र है, तो अस्त्र शस्त्र के रूप में दिया था। उसके बाद डॉक्टर सचिन भाई की क्लास से, नहीं महेश भाई की क्लास, जगदीश भाई साहब के अंग संग के बहुत सुंदर से अनुभव, कैसे हमने भी जगदीश भाई जी को संग संग साथ में देखा है। कभी भी भाई साहब यूँ गर्दन, जो भी पुराणों ने देखा होगा, भाई साहब यूँ चलते थे तो कभी गर्दन यूँ नहीं रखते थे, कभी नहीं। आज इंस्टीट्यूशन को जो आज देख रहे हो ना, एज ए ब्रह्मा कुमारी जी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का जो सेटअप है, ट्रेनिंग है, सबके लिए भट्टियां हैं, सबके लिए शिविर है, एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल सेटअप बनाने वाले हमारे जगदीश भाई जी थे। टोटल भट्टियां, ब्राह्मणों के लिए भट्टियां, नयों के लिए शिविर, VIPs के लिए कॉन्फ्रेंस होगी, फिर रेगुलरली इन लोगों के लिए भट्टियां, चार्टी डिपार्टमेंट इसको कहा जाता है, हर चीज का एक सेटअप बनाने वाले हमारे भ्राता जगदीश भाई जी थे। और उनको साइंस का फील्ड में कहीं भाषण करना हो तो जगदीश भाई को, मेडिकल वालों की बात आती थी और तो कोई होते नहीं थे, बेचारी दादियां भोली भाली, मेडिकल वालों के सामने जगदीश भाई को ले जाओ, एजुकेशनलिस्ट आ गए तो जगदीश भाई को, प्रेसिडेंट के पास जाओ तो जगदीश भाई को ले जाओ, हर फील्ड की नॉलेज, हर फील्ड की। मैंने यहाँ तक उनकी क्लास में सुना है, टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को 1964 में इस वाले पेज में ये वाली न्यूज आई थी, हम तो दंग रह जाते थे। बाइबल में इस पेज में इस वाले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, कुरान में ये लिखा हुआ, उनके जबान पे जैसे चढ़ा हुआ रहता था, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, हमने क्लास में भाई साहब की सुना है वेदों का क्या है, पुराण का क्या है, कुरान हर चीज का भाई साहब पेज नंबर तक बताते थे। इस पेज में, इस वाली स्टांजा में, इस वाली इसमें, इतनी उनकी जबरदस्त मेमोरी पावर, अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी। फिर उसके बाद हम सब ने अनहद नाद को सुना, सबने अनहद नाद अंदर ही अंदर। उस क्लास ने हम सबको क्या कर दिया, भट्टी को समापन की ओर नहीं ले जा रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, भट्टी की मेरी जीवन के अंदर जागृति आ गई, मेरे जीवन की एक नया दृष्टिकोण मिल गया। अभी तक जो हम पुरुषार्थ कर रहे थे, अभी तक हम जो चल रहे थे, कुछ और नया दृष्टिकोण, नया सोच, नए विचार के साथ मेरे जीवन को एक यू टर्न करने का एक मौका मिला हुआ है। ये बाबा का घर, मधुबन का वाइब्रेशन, दादियों की तपस्या भूमि, मम्मा की खास जो मदद, ये सारी चीजें मेरी लाइफ को क्या करेगी, कैसे जैसा चल रहा वैसा चल रहा, ठीक है अभी हमें यू टर्न के रूप में लेना, कुछ विशेष करके दिखाना है। उसकी प्लानिंग कौन करेगा, हम खुद करेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट, मैंने खुद इस सब्जेक्ट को इसलिए चूज किया है, कुछ समय पहले घटना घटी थी, सबको पता है श्रीनगर में, ठीक है। तो उस समय घटना घटी थी तो सब जगह देश विदेश में आवाज आने लग गई, सब ब्राह्मणों के मन में भी क्या आने लग गया, क्यों क्या, जैसे आज बाबा ने कहा ना, चाहे कल की घटना भी हुई तब भी क्यों क्या कैसे सब कुछ चलने लगा। हमें ज्ञान है, समझ है, उसके बावजूद भी हमारा मन क्या करने लगता है, कहीं ना कहीं क्यों क्या कैसे के प्रश्न उठाने लगता है। तब हम लोग यहाँ आने के पहले, हम लोग लखनऊ में टीचर्स बहनों की एक भट्टी होती है, तो हम लोगों ने एक सब्जेक्ट निकाला, वो सब्जेक्ट का नाम ऐसे रखा, गवर्नमेंट ने रखा ऑपरेशन सिंदूर, पता है ना। तो हमारी बहनों ने कहा दीदी हम लोग भी भट्टी करेंगे, उसका नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर, समझ में, ऑपरेशन सिंदूर, हम पाप को दूर करने की भट्टी, समझ में आ रहा। तो उसके बाद मेरी बुद्धि चलने लग गई, हम सभी योद्धाएं हैं, है या नहीं है, हम सबको बाबा ने ठीक है, सभी तैयार, मैं सिर्फ क्लास नहीं कराऊंगी, वन में नहीं रहेगा, आप लोगों से भी हम जवाब चाहेंगे, ठीक है, आप सबका इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें। चलो सब्जेक्ट क्या है, हम सभी कौन है, रूहानी योद्धे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी ऐसी घटना होती है मैं कभी न्यूज के रूप में नहीं सुनती हूँ, ये न्यूज नहीं है हमारे लिए, हम सब कौन है, जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज, जिम्मेवार है या नहीं, हम सब जिम्मेवार आत्माओं का फर्ज क्या बनता है, न्यूज सिर्फ देखना, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसा हमारा फर्ज क्या बनता है। तो हम सब रूहानी योद्धाएं हैं, क्योंकि कोई 10 साल से चल रहा, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, 40 साल से, है ना, यहाँ सभी बैठे हैं ना, इतने दिनों से बाबा हमको ट्रेनिंग क्यों दे रहे, क्यों ट्रेनिंग दे रहे, बाबा को पता, हमारा कमांडर को पता है जो आने वाला समय है उस समय के लिए, अगर उस समय बैठ करके ट्रेनिंग देंगे तो हम योद्धा बन पाएंगे, तलवार चला पाएंगे। हमारे यहाँ भी कई मिलिट्री वाले आते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं, कुछ मिलिट्री वाले थे वो क्या सुनाते थे पता है, दीदी हम जीवन काल में मिलिट्री में आर्मी में तो रहे, लेकिन एक बार भी हमको युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। और गवर्नमेंट अभी हमको बिठा करके पेंशन देती, हम पेंशन दे रहे। और कुछ लोगों ने क्या कहा, हमारी लाइफ में हमने एक बार लड़ाई की, कारगिल की लड़ाई की थी हमने, पहले वाले थे वो पाकिस्तान के साथ की लड़ाई की थी, और अभी वाले तो फिर अभी इन्वॉल्व हो रहा उनका। तो उन लोगों को जो ट्रेनिंग मिलती है उस दिन के लिए नहीं सोच करके ट्रेनिंग देते हैं। सालों से गवर्नमेंट क्या करती है, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से उनको बिठा करके, सवेरे सवेरे देखा मिलिट्री वालों को क्या करते हैं, दौड़ाते हैं सवेरे, ऐसे बस दौड़ते रहते हैं वो लोग, भल लड़ाई नहीं लगी है तब भी वो सवेरे क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं। राइफल आदि चलाते हुए देखे ना, तलवार ये बंदूक आदि चलाते हुए, और कभी कई बार हमने देखा है कि एरोप्लेन को भी उड़ाते, लड़ाई नहीं लगी हुई फिर भी वो कोई भी एरोप्लेन आदि जो फाइटर फ्लाइट आदि जाम न हो जाए उसकी प्रैक्टिस होती रहती है सालों से, रोज रेगुलर होती रहती। तो बाबा ने हम सबको 10 साल, 20 साल, 20 साल वाले कोने में हाथ उठाओ इसमें देखेंगे, अच्छा 20 साल, 10 साल वाले, 5 साल वाले, साल भर वाले, सब बैठे। हम सबको ट्रेनिंग क्यों मिल रही, किस बात के लिए ट्रेनिंग मिल रही? बाबा को ये सारी ट्रेनिंग शुरू से लेकर अब से, अपने जीवन में भी देखो, जब से हम बाबा के बने हैं तब से लेकर रोज हमें ज्ञान और योग की ट्रेनिंग जो मिल रही है आने वाले समय को देखते हुए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे समय पर हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज बनता है जो विश्व को शांति देना, पवित्रता देना, प्रेम रहम हमारे अलावा कोई दे सकता है? हमारे अलावा कोई दे सकता है? ये ट्रेनिंग और किसी को नहीं मिली, सिर्फ हमको मिली सारे विश्व भर के अंदर। तो अभी हम अपनी योद्धाओं को अपनी चेकिंग तो करके देखें हमारे अंदर कितनी शक्ति आई, और हमेशा इस युद्ध में, इस रूहानी किसी, चाहे वो युद्ध हो ये युद्ध हो, हमेशा हर योद्धा का लक्ष्य क्या होता है, क्या होता है, विजय। हर योद्धा का लक्ष्य होता है विजय पाना। तभी योद्धा हो ना भाई, कोई झुटका तो नहीं आ रहा किसी को, टाइम तो है भाई, झुटका आने का टाइम है, लेकिन योद्धाएं कैसे होते हैं, सभी अलर्ट, सभी अलर्ट, सबको मैं काम दूंगी, थोड़ा सा काम भी मिलेगा भी आपको, सब अलर्ट होकर के बैठना। तो हम सब योद्धाओं का सबका लक्ष्य दीजिए, चाहे कमजोर सिपाही भी होगा ना वो भी क्या लक्ष्य रखता है, मुझे अपने टारगेट को अचीव करना, मुझे सफलता को पाना है। तो हमें सफलता को पाने के लिए मैंने कुछ 4 गेट्स बनाए, सब अपने अपने डायरी पेन हो तो अपने अपने डायरी पेन में 4 गेट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। सफलता का सितारा या सामने फरिश्ते सफलता का एक ताज लेवे, तिलक लेवे हमारे लिए खड़े हुए। सब अपने अपने डायरी में 4 गेट्स बनाइएगा, बताती हूँ मैं कौन कौन से गेट। 4 गेट्स को हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तो साथ साथ में हमें चेकिंग भी करनी पड़ेगी। उन 4 गेट्स को जब क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, सामने फरिश्ते खड़े हुए हैं। सीन को क्रिएट करो सब अपनी बुद्धि में। तो 4 गेट्स हम क्रॉस करके जाएंगे, सामने फरिश्तों का झुंड, फरिश्तों का राजा खड़ा है, हाथ में दादियां मम्मा आदि क्या लेकर के, एक विजय का तिलक, ताज तख्त लेकर के। उस विजय के तिलक को पाने के लिए हमको भी 4 गेट्स क्रॉस करना। सबसे पहला गेट, और उसके ऊपर मैं एक एक मिनट भैया कमेंट्री भी करा दूंगी, हाँ चेकिंग भी हम करेंगे, देखेंगे लास्ट 4 गेट्स को क्रॉस करके वो तिलक लेने के कौन कौन अधिकारी बनते हैं, चेक भी करेंगे साथ साथ में। सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, इसकी चेकिंग करना। पहला गेट बताऊंगी, दूसरा गेट कौन कौन किस गेट में अटक जाता है देख भी लेना, चेकिंग भी करना, ठीक है? जो हम सब सुन चुके, कोई नई बात मैं नहीं सुना, सिर्फ सिर्फ, लेकिन आज उसकी चेकिंग करेंगे, इन चारों गेट्स को क्रॉस करते हुए हम लोग कहां पहुंचेंगे, हा? सफलता का, क्योंकि योद्धा माना ही क्या है, विजय होना है, विजय होना है, विजय का तिलक हमें अपने मस्तक पे लगाना है। आज लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो सब अपने मस्तक पे विजय का तिलक लगाना। उसके लिए सबसे पहला गेट बनाइएगा, सब अपने अपनी चाहे डायरी में गेट बना लो। सबसे पहला गेट कौन सा है, हमारा आत्मा का पहला गेट कौन सा है जिसको हमें क्रॉस करना है, देह का गेट। ठीक है, सबको आत्मा को एक देह का गेट मिला, एक गेट बनाइएगा, उसमें देह, उस देह में कौन कौन सी बातें आती है, कौन कौन सी बातें आती है, नाम का, रूप का, गुण का, सुंदरता का और अपनी विशेषताओं का, कई बार अपनी कमियों का भी। कई बार क्या होता है, अपनी कमियों को भी गिल्ट फील कर हम अटक जाते हैं, उसको क्रॉस कर नहीं पाते। तो इसीलिए पहला गेट बनाइए सब अपने देह से संबंधित, समझ में, सबको पता है ना, देह को आकर्षण जो रुकावट, इस गेट में कौन अटक जाता है, देह, देह के धर्म, देह की भाषा, देह के से रिलेटेड जो भी, उसका जस्ट बाबा ने ज्ञान क्या दिया है, उसको क्रॉस करने की विधि क्या दी है, क्या आप कौन हो, एक सेकंड के लिए पूछो रियलिटी क्या है, मैं कौन। दादी जानकी जी कहा करते ना, मैं कौन, मैं हूं आत्मा। कल भी दीदी ने बहुत अच्छा एग्जांपल कितना अच्छा दिया, पतीले को बीच में लाएंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, पतीला हट जाए तो आग को भी बुझाने की ताकत रखेंगे। हमारा नेचुरल नेचर ही क्या है, पानी का नेचुरल नेचर ही शीतल, हाथ जल जाता है तो क्या कहते हैं, पानी में डालो, मेरा नेचुरल नेचर ही, जब वही पानी आग के संपर्क में आता है तो गर्म हो जाता है, तो मेरा नेचुरल नेचर ही शीतल था। तो चलो हम पहले गेट को हम सभी भी क्रॉस करेंगे। मैं छोटी सी कॉमेंट्री कराऊंगी, खुद चेक करिएगा कौन सी चीजें मुझे उस गेट से पास होने में अटक रही है। ठीक है, चेक करेंगे सब अपने अपने, अपने आप को एक मिनट के लिए चेक भी करिएगा, नोट करिएगा पहले वाले गेट में कौन सी बातों ने मुझे रोक लिया, जिस कारण से मैं आगे बढ़ नहीं पा रही, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। मैं एक कॉमेंट्री के रूप में भी देख आपको सुनाऊंगी, आप सभी फील करिएगा, चेक भी करते रहना, नोट भी करना। ओम शांति। अब तक मैंने शीशे में जिसको देखा वही मेरा स्वरूप समझा था, मुझे भी ज्ञान की रोशनी मिली है, ज्ञान का टॉर्च मिला है, उस रोशनी से मैं देख रही हूं देह का रूप, देह का रंग, गुण विशेषताएं, कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही है, मुझे रोशनी मिली है, मैं अविनाशी आत्मा, मैं प्रकाश पुंज आत्मा, प्रभु का प्रिय रतन, भगवान की नजर मुझ पर पड़ी है, अंतर मन की गहराई से स्वयं को चेक करें, इन सब बातों में कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। बार बार अपनी ओर आकर्षित करें। मुझे अभी अंतर मन की आवाज को सुनते हुए अपने सत्य स्वरूप को देखना है। मैं चमकता मणि हीरा जब मैं स्वयं को अविनाशी आत्मा महसूस कर रही हूं, इस देह के गेट से क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही हूं। सभी नोट करें, चेक करें कौन सी चीज मुझे इस गेट को क्रॉस करने में रुकावट डाल रही। ओम शांति। देखा मैं सबसे अंतर मन की गहराई में अंधेरा है उसकी भी जानकारी, रोशनी मिली है उसका पता है, गलत है उसकी भी जानकारी और सही क्या होना चाहिए उसकी भी हमें पहचान मिली नहीं मिली। तभी सही कर पाएगा जब हमारे पास सही की। नोट किया सबने? नोट किया। चलो नेक्स्ट, अभी और आगे बढ़े। एक गेट को क्रॉस किया, सबने किया, कोई अटक गए बैर रुक गए क्रॉस किया। अगर जो कोई कभी है तो उसको अंडरलाइन कर लेना, उसकी युक्ति फिर बता देंगे नेक्स्ट अभी। हाँ जी, नेक्स्ट अभी कौन से? सेकंड नवन, देह होने के बाद देह से बाद किसको जरा संबंध जुड़ा हम सबका? देह के संबंधों का। हम संबंधों को एक होता है स्नेह, एक होता है बंधन। बाबा ने हम सबको स्नेह रखने मना नहीं किया, प्यार सबके साथ है, लेकिन संबंध जो चीज हमें बंध जाती है, बांध देती है, संबंध में स्नेह, शुद्ध पवित्र स्नेह और संबंध में स्वार्थ, दो चीजें हैं। संबंध में पवित्र प्रेम होगा तो वो पवित्र प्रेम उनके होने न होने से दुख की फीलिंग नहीं होगी। आप देखो, एक बच्चा बीमार है, ठीक है, एक बच्चा, माताएं बताएंगी, बच्चा बीमार है, उस बीमार बच्चे के समय में बीमार बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक नर्स भी ट्रीटमेंट कर रही है, एक माँ भी ट्रीटमेंट कर रही है, दोनों में से अच्छा कौन करता है? सोच के बताइए। बच्चा बीमार है, बीमार बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट कौन करता है? कौन करता है? जिस समय उस बच्चे को माँ के सच्चे प्यार की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा गलत कौन सोचता है? तो इसको प्यार कहें। सबसे ज्यादा जिस समय बच्चा बीमार है हमारा, उस समय उसको अच्छे वाइब्रेशन की, अच्छे प्यार की जरूरत है, उस समय सबसे ज्यादा गलत सोचने वाले कौन है? माँ। उसको पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ी हुई बातें, सुनी बातें, सब कुछ याद आता है। मैंने सुना था उसको बुखार आया था, उस बच्चे के साथ ऐसे हुआ था, मैंने ऐसा पढ़ा था उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ, सारी बातें कब याद आती? जब मेरा बच्चा बीमार होता है, उस बच्चे को हमारे शुद्ध वाइब्रेशंस की जब जरूरत होती है, उसी समय हम क्या दे रहे हैं उसको? हम नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, यही प्यार है। बाबा ने यही तो हमें रोशनी दिया, इसलिए कहा जाता है ना, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा गया। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान शक्ति है। ज्ञान प्रकाश कैसे, जैसे भी रोशनी है, मैं यहां से उतर करके जाऊंगी, मैं आसानी से चली जाऊंगी। अगर अंधेरा हो जाएगा तो एक चोट इससे खाऊंगी, एक उससे खाऊंगी, सीढ़ी से गिर जाऊंगी। कारण रोशनी, जो चीज जैसी वैसे दिखाई नहीं दे रही है मुझे। तो भगवान ने क्या कहा, नॉलेज इज लाइट, ज्ञान एक प्रकाश है, ज्ञान शक्ति भी है। अब उस ज्ञान को हमें किस रूप में यूज करना, ज्ञान को प्रकाश के रूप में यूज करना। तो इस समय मेरे संबंध समझ मिली है मुझे, दोनों चीजें हमारे पास है, दोनों चीजों की समझ, एक लौकिक संबंध, एक भगवान के साथ का संबंध। दोनों संबंध का भी पता है, दोनों संबंधों के रिजल्ट का भी पता है। जीवन भर आपने अपने संबंधों के लिए तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, संपत्ति लगाया, सब कुछ लगाया, लास्ट उनके द्वारा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या कहेंगे वो लोग, देख लो, अनुभव सबके पास है, इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है, है ही भाई। सभी परिवार वाले बताओ, सभी बैठो, सभी संबंधी आपको क्या सर्टिफिकेट देने वाले हैं, हा? एक तराजू लेकर के बैठो, देखो। हम सवेरे से लेकर रात तक समय, सांस, संकल्प, शक्ति कहां लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है, और भगवान के लिए जो लगाने वाले उसका रिजल्ट पता है सबको, पता है नहीं? नॉलेज इज लाइट, ज्ञान को प्रकाश के रूप में यूज करके अभी इस तराजू को हमें सामने लाना। ला सकते हो सभी, दोनों तराजू को लाएंगे। लौकिक संबंधों को बाबा ने क्या कहा, छुट्टी दे रखी है, किसके लिए छुट्टी दी है, तोड़ निभाने के लिए, उसका तरीका भी बताया। तो बाबा ने क्या कहा, कल तो क्या कहा था, कौन सचिन भाई ने तो क्या कहा था, समय आ चुका है, अभी समय वही आ गया, अभी और इंतजार करने का समय नहीं है। जो साकार बाबा कहा करते बच्चे, अंत में ऐसा होगा, अंत में ऐसा, वो तो समय आ चुका है, और किस समय का हम इंतजार करेंगे, अब वही समय है। लौकिक संबंधों के प्रति समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, तन, मन, धन लगा करके हमने जो रिजल्ट देखा, अब भगवान को हमने गाया, हे भगवान, माता, पिता, बंधु, सखा, स्वामी, आप तो हमारे सब कुछ हो, कह दिया सब कुछ, कहा और करने का समय, अभी उस संबंध को निभाने का समय। तो निभाने का समय, दोनों चीजें हमारे सामने है ना। अब हम चलिएगा, हम क्रॉस करेंगे इस वाले गेट को भी, चेकिंग करेंगे भी, इस गेट में कौन सा मुझे खास, एक संबंध हर एक का एक होता है, बहुत सारे नहीं होते, बहुत सारे को तो हम निभा ले जाते, लेकिन एक जो संबंध होता है ना, वो एक क्या करता रहता है, बीच बीच में वो खींचता रहता। आज उस एक को पकड़ेंगे, नोट कर लेना। चलिए अभी बाबा से हम सर्व संबंध जोड़ेंगे, फिर धीरे से अपने आप को चेक करके देखेंगे। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का वायदा किया है, मुझ आत्मा का अविनाशी माता पिता, अविनाशी संबंधी, न जाने मैंने इस चक्र में कितने जन्म लिए, कितने मेरे माता पिता भाई बंधु बने, कितने पति पत्नी बच्चे बने, उस सारे पार्ट को बजाते हुए उन सब को छोड़कर अब अंतिम जन्म में अंतिम संबंधों के बीच भी मैं खड़ी हूं। एक तरफ अंतिम जन्म के संबंधी, दूसरी तरफ मुझ अविनाशी आत्मा के अविनाशी संबंधी, जिसको मैंने जन्मों से याद किया था, मेरे सच्चे सच्चे माता पिता, हर कठिनाइयों में आकर उन्होंने मदद की। जब किसी संबंधों ने धोखा दिया, मेरे प्यारे बाबा ने आकर के मेरा हाथ थामा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हर जन्म में साथ निभाने वाला, संबंधी को छोड़ हे आत्मा, किस संबंध में तुम अटक गई हो, कौन सा संबंध है बार बार अपनी ओर खींच रहा है, सब अपनी डायरी में नोट करो। कौन सा उस संबंध मुझे प्रभु प्यार के अनुभव से वंचित करा है। आज मैं सच्चे दिल से उस संबंध को प्रभु के आगे अर्पित करते हुए, उतनी ही दिल की गहराई से बाबा को संबंध से मैं याद कर रही हूं। जो संबंध आपको कष्ट दे रहा है, तंग कर रहा है, आप बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को स्रोत में देखो। आज से वो मेरा निकटतम संबंध है। बाबा का हाथ पकड़कर दूसरे गेट से भी मैं क्रॉस करती जा रही हूं। इस संबंधों का गेट भी मैंने परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हुए क्रॉस करें। ओम शांति। क्रॉस कर दे, अटक गए दे, क्या कहेंगे? सभी रह गए या आगे बढ़ गए? बढ़ गए तो फिर मैं भी आगे बढ़ू। अगर नहीं दीदी, आप तो आगे चले गए, मैं तो, हम लोग तो पीछे ही रह गए। नहीं, दोनों गॉट क्रॉस कर लिया। अच्छा बेबी, तीसरा, तीसरा कौन सा? 24 घंटा आपको साथ देने वाला संबंधी कौन बनाया आजकल? साधन। साधन, जितने भी साधन है ना, जो भी साधन, जब तक मैं इस पे बैठी हूँ, माइक लेकर के बोल रही हूँ, अच्छा एक घंटे के लिए बहुत अच्छा माइक सुना रहा है, मुझे बैठने के लिए भी कुर्सी, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये, मैं अभी ले करके उठूंगी, ले करके डाइनिंग टेबल पे चलूंगी, मजा आएगा ना? नहीं, बैठ करके सुना रही हूँ, बैठ करके ये आवाज आप तक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना प्यार हो गया इससे मुझे, एक हाथ में इसको, एक हाथ में इसको पकड़ करके मैं चल पड़ी। आधा किलोमीटर भी चल पाऊंगी? तो बाबा ने क्या कहा, ये जितने भी साधन क्या है, बाबा ने कहा शरीर है तो खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, बस चाहिए ना, ये तो साधन है, जरूरत है, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य साधन नहीं। लक्ष्य क्या है? साधन, साधना हमारा लक्ष्य है, न कि हमारे साधन हमारे जीवन के लक्ष्य। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम क्या है बताए? आप जितनी तपस्या में आगे बढ़ेंगे, प्रकृति उतना ही साधनों को आपके आगे उपलब्ध कराएगी। आप रोशनी की ओर आगे बढ़ेंगे, आपके पीछे पीछे परछाई, आप मना भी करो तब भी परछाई आपके पीछे आएगी आएगी। परछाई को छूना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? रोशनी की ओर, प्रकाश की ओर आगे बढ़ना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? जब तक है हम यूज कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है बाबा का बनने के बाद? बाबा ने एक बार मुरली में अव्यक्त महावाक्यों में कहा था, बच्चे जितने भी संसार के जो साधन है, वो साधनों का उसकी जरूरत ही तब भगवान के कार्य के लिए जरूरत है। आज से 100 साल पहले इतने माइक आदि यूज होते थे, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इतने लाइट, रेड लाइट, टेप रिकॉर्डर आदि। भगवान को जब विश्व परिवर्तन का महान कार्य करने की आए भगवान, तब उनके कार्य में मदद के लिए सब कुछ साधन है। तो ये बाबा ने हम सबको संकल्प दिया, चाहे मकान है, दुकान है, गाड़ी है, मोटर, सब कुछ है। बाबा ने ऐसे नहीं कि कोई साधारण नहीं, हम बाबा के बच्चे, सब कुछ आज के समय में कोई साधारण नहीं है बाबा के बच्चे। बाबा ने सबको दे रखा, सबको, सबको प्राप्त है या नहीं? कोई ऐसे भी दो रोटी के लिए भी हम, दीदी हमें बहुत तकलीफ है, दो रोटी के लिए बड़े मुश्किल से मिलती है, कोई हाथ उठाओ। बाबा के बच्चों ने, भगवान ने ऐसा वरदान दिया अंतिम समय तक हमें, अन्य से हम भेंट करके देखे, किसी चीज की तुलना करके देखे, में कमी नहीं, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा। मैं तो बड़ा नाज है मुझे, सच बताओ किस बात का नाज है? दुनिया में कपड़े, पहली बात कपड़ों की, दुनिया में लोगों के कपड़े उतरते चले जा रहे, और भगवान ने इतने अच्छे वस्त्र हमको पहनाया। हमारे वस्त्र भगवान की याद दिलाते। कोई हमको हमारे कपड़े से देखेगा तो पूछते हैं, दीदी आप किसी संस्था से जुड़े हो गए क्या? आप भगवान से जुड़े हो क्या? आप बताओ, इससे अच्छा वस्त्र कौन सा हो सकता? और दुनिया में तो दिन प्रतिदिन क्या कर रहा, लोग अपने उतार रहे हैं। या तो कहते भगवान को याद करो तो आंखें बंद करके बैठो, क्यों? देखेंगे तो मन भटक जाएगा। भगवान ने कहा, रे आप ऐसे देवियों की तरह वस्त्र पूरा ढका हुआ ऐसा वस्त्र पहन के बैठो, आपको देखे तो उनको भी भगवान की याद आ जाए। तो ये अच्छा साधन दिया, खराब दिया, बताने सोच के देखो। कई लोग हमसे पूछते हैं कि दीदी आपको सफेद रोज पहन करके बुरा, आपको बोर नहीं होते हो क्या? हम तो कहते आप लोग को बोर होना चाहिए, आप तो एक दिन नीला पहनते, एक दिन लाल पहनते, एक दिन पीला। मैं तो सातों रंगों को साथ में लेके एक ही बार पहन लेती हूँ, इसमें तो कितने रंग है, सातों रंग है। किसी की गलत नजर हम पे नहीं पड़े, ऐसा वस्त्र भगवान ने पहना है। तो बुरी चीज दिया भगवान ने, बुरी चीज दी। और घर दिया है तो आप बताओ, जिसने अपने घर को भगवान का घर बनाया, ऐसी छत्र छाए, ऐसी सिक्योरिटी और किसी घर की हो सकती है? दुनिया में वाटर प्रूफ होगा, फायर प्रूफ होगा, बुलेट प्रूफ होगा, न जाने कितने प्रूफ वाले बना रहे, लेकिन बाबा के घर जैसी छत्र छाया किसकी हो सकती? जिस घर में भगवान विराजमान हो, आप सवेरे शाम कमांडोज को, सिक्योरिटी वालों को रखो, उतना निश्चिंत रहेंगे जितना बाबा के घर में निश्चिंतता, कहां रह सकते हो? इतना अच्छा तो घर छत्र छाया दिया उसने। कुछ घटनाएं होती है तो कहां दौड़ करके आते हैं? बाबा के घर में, या तो घर में बाबा का कमरा बना हो तो दौड़ करके। तो इससे बढ़कर के साधन हमको कौन सा चाहिए? और अन्न भोजन दिया है तो कौन सा दिया? क्या खाते हैं हम सभी रोज? भक्ति मार्ग में तो थोड़ा सा प्रसाद सप्ताह में एक बार मिलता है, हम तो तीनों टाइम क्या खाते हो भाई सभी? तो भाग्यशाली है या नहीं? कोई चीज की कमी रखी? पहनने की ना कमी रखी, ना खाने की कमी रखी, ना छत्र छाया की कमी रखी। किस चीज की कमी उससे देखी? साधन की हमारे पास कमी है भगवान ने। तो क्यों हम संसार के अल्पकाल के, वर्तमान समय, बहुत अच्छा मैंने एक क्लास सुना था, रावण ने कौन सा रूप धारण कर लिया सीता को उठा करके ले जाने के लिए? वही मोबाइल का रूप। बेचारी सीता को ये पता ही नहीं, वो तो सामने सोने का हिरण, अरे भगवान मेरे साथ में बैठा है, इससे सुंदर कोई और हो सकता है क्या? इससे अच्छी, भगवान से अच्छी चीज कोई हो सकती है क्या? कभी सोचा? आकर्षित कहाँ हो गए? मुझे क्या चाहिए? सोने का हिरण चाहिए। उस सोने के हिरण ने क्या कर लिया? राम से अलग कर दिया। तो हम भी इस कलयुगी दुनिया में सबसे ज्यादा हम कहते जो मोबाइल है ना, इतना खतरनाक है ये। पहले देखो सिन माँ के लिए घर जाना पड़ता था, पाप करने के लिए घर घर जा, भाई हम सप्ताह में एक बार पिक्चर हॉल जाते थे ना, सिन माँ के, सिन माना पाप करने के लिए एक बार जाना पड़ता था, और आपको जाने की जरूरत ही नहीं, और घर बैठे ही आप जितना पाप करना चाहे, दिन में रात में, हमने देखा 24 घंटा जितनी भी गंदी गिरना हो तो, जितनी गिरावट की तरफ जाना हो तो इसके माध्यम से जाता है, और जितना उन्नति को भी पाना हो तो। तो अभी हमें बाबा ने जो विवेक शक्ति दी है उसके आधार पर भगवान के द्वारा प्राप्त साधन और साधना और कलयुगी दुनिया के, ठीक है? अभी हम क्या क्रॉस करेंगे भाई, सब तैयार? देखेंगे, चेक करके देखेंगे सभी को। देखो ये मोबाइल, आप ये नहीं समझ लेना कि अरे दीदी हमने क्लासी तो देखी थी ना, फिर कहते कोई लोग दीदी हमने तो फलानी दीदी की मुरली सुनी, हमने मधुबन की मुरली सुनी, वो शहर की मुरली सुनी, इस शहर की मुरली एक ही होती है, मुरली बाबा की मुरली होती। ब्राह्मणों में भी माया कहाँ से आ रही? फलाने की मुरली, उसकी मुरली, इसकी मुरली, उसकी मुरली, सब मुरलियां बंद, सब मुरलियां बंद। वो मजबूर है, कमजोर है, लाचार है, उनके लिए है वो। क्या जो बेचारे लाचार है, पुराने पुराने, उनके लिए जो आ नहीं सकते, साधन नहीं है उनके पास, जो बाबा को छोड़ नहीं सकते, लाचार हालत में उनके लिए बैठ करके मुरली ऑनलाइन या तो यूट्यूब से सुने। हम बाबा के बच्चों के लिए बाबा के द्वारा जिस स्थान पे जहां हम निमित्त है वहां जाकर के, बाबा ने कल क्या कहा था, सन्मुख सुना रहा हूं, सन्मुख कान है ना, मुरली सन्मुख होती है, तो बाबा की मुरली भी हम सन्मुख सुनने वाले। और कोई चीज सन्मुख होती? खाना भी यूट्यूब से कोई खाता है भाई? आप लोगों में से खाना कोई यूट्यूब से खाने वाला खाता था भाई? नहीं, यूट्यूब से खाना नहीं खाते हो? कपड़े वपड़े यूट्यूब से पहनते हो तो बताओ। बाकी सबके लिए लाइव चाहिए, सिर्फ मुरली यूट्यूब पे। तो ये साधन बाबा ने कुछ और सोच करके, इसीलिए हमें साधन और साधना इसके अंतर को समझ करके, साधना के पथ पर राही को ये माया साधन जो अपनी ओर आकर्षित करती है, अब इसको भी हमें क्या करना होगा? अनुभव तो किया ना अभी 3 दिन भट्टी में, जितना हम घर में देखते थे मोबाइल उतना देखा आप लोगों ने यहाँ पे? अरे दीदी इसलिए नहीं देखा क्योंकि नेटवर्क नहीं आता था, ऐसे जबरदस्ती तो नहीं हुआ, नेटवर्क ही नहीं आता था इसलिए हम देख नहीं पाए, चाहे नेटवर्क आए चाहे ना आए, लेकिन हमें जरूरत जितनी है, आवश्यकता जितने जीवनोपाय के लिए उतना है, ठीक है? कोई भी साधन अपनी ओर आकर, पहले देखो पहले जमाने में क्या होता था पता, एक मकान जिंदगी भर में बना लेते थे, एक गाड़ी हम जिंदगी भर चला ले, चाहे ना भाई पुराने बुजुर्ग बैठे में बताइएगा, जीवन काल में एक मकान बन जाता था, एक गाड़ी खरीदते थे, एक फोन एक होता हुआ करता था। और आजकल ट्रेंड क्या बना, एक वहां मकान, एक बड़ा मकान, एक छोटा मकान, एक वो वाली गाड़ी, एक ये वाली, अरे 2 साल हो गए दूसरी गाड़ी बदलो, दूसरा चप्पल, पता नहीं क्या क्या हो गया है। इतने साधन और खाने की चीजें भी कितने हो गए, पहले इतने हुआ करते थे जो बुजुर्ग बताइए, लाल हरा पीला नीला, कितने वैरायटी, माया ने जाल बिछाया है, ये सब माया के रूप पे आकर्षित करने के लिए। आंखों से ही तो आकर्षित हुई थी ना, सोने का हिरण कभी हो सकता है? सोचने की बात है, सोने का हिरण कभी हो सकता? अगर सीता इतना दिमाग लगाया होता सोने का हिरण, तो ऐसे खाने पीने वाली चीजें कितने रंग बिर, इतनी सुंदर वैरायटी, कभी जिंदगी में हमने नहीं देखा होगा वो, उसकी शक्ल सूरत आदि, ये सब हमें राम से वंचित करने वाले साधन, ठीक है? चले अभी हम लोग इस गेट को भी क्रॉस करने के लिए, चले। ओम शांति। सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा को हम साथ में लेकर संसार की सर्वोच्च शक्ति मेरे साथ बाबा ने मुझे मेरे हथेली पे स्वर्ग दिखा दिया। सब अपनी हथेली पे देखो स्वर्णिम दुनिया को, सब कुछ उपलब्ध है। ऐसी सुंदर सुहावनी दुनिया, प्रकृति भी सुंदर, वस्त्र भी, राज दरबार को देखो, पशु पंछी को देखो, पुष्पक विमान को देखो, एक ऐसी सुंदर नई दुनिया बाबा मुझे उसका मालिक बनाना चाहते। उसकी तुलना में जिसको मैंने मुट्ठी में पकड़ रखा है, जाने वाली दुनिया के वस्तु साधन, आज मैं बाबा से प्रतिज्ञा करते हुए बाबा का हाथ पकड़कर इस अल्पकाल के आकर्षण वाले साधनों को निमित्त मात्र यूज करूंगी। ये मेरे पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य नहीं, इसको भी क्रॉस करते हुए मैं साधक कलयुगी दुनिया के जो भी साधन मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपने डायरी में नोट कर रही हूं, मैं बाबा को सौंप रही हूं। बाबा ने मुझे हाथ पकड़कर उस साधन के बंधनों से भी खींचकर निकाल लिया। स्वर्णिम संसार की ओर अग्रसर बाबा का ये प्यार बल ताकत ने मुझे इस वैभव साधनों से भी मुक्त होकर प्रभु प्यार के पीछे सब कुछ न्योछावर करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ती जा रही हूं। ओम शांति। सभी क्रॉस कर लिया, किया है क्रॉस, कोई रह गए तीसरे नंबर गेट पे? सभी क्रॉस हो गए या अभी अटके हुए वहीं पे? जो अटक डालने वाली चीज है ना, उसको नोट करो, सौंप दो बाबा को, सौंप दो बाबा, ये ले लो, आप ही ले सकते, और कोई मनुष्य लेगा? मेरे भाई बहन सगे संबंधी को देखो, ये तंग करने वाली चीज है, आप ले लो, लेंगे क्या? एक बाबा ही ये लेने वाला। अब लास्ट है हम सबके पुरानी स्वभाव संस्कार। चौथा नंबर गेट बनाइएगा, सब अपने अपने डायरी में बनाना, चौथे नंबर का गेट। कौन सा स्वभाव संस्कार बहुत महीनता से चेक करें सभी, देखना कौन सा ऐसा स्वभाव है, रह रह करके वो क्या कर रहा, बीच बीच में इतनी अच्छी बट्टी चल रही करके तो जा रही हो, जाते जाते रास्ते में क्या हो जाएगा, फिर वो निकल आएगा। तो कौन सी चीज मैंने अपनी माइन्यूटली उसको चेक करो, जो रह रहे, कई बार होता है ना कोई एकाद संस्कार होता है हम सबका, वो रह रह करके क्या होता, इमर्ज होता रहता है। हम सोचते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन चला गया, आज तो मैंने इसके ऊपर विजय पा ली, 8 दिन अच्छा रहा, 9वें दिन क्या हो जाता है? तो इसलिए आज मधुबन महायज्ञ में क्या करेंगे, उसको मैन्युअली चेक करो। हम सब जानते हैं, दूसरा क्यों कहे हमें, दूसरों से मेहनत क्यों ले? देखना आपके अंदर ये चीज है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दूसरों से क्यों मेहनत ले? भगवान हमें पढ़ा रहा है, तब इंसान से ले ले मदद। बाबा खुद कह रहा है और हमें रियलाइजेशन भी है, अंतर आत्मा की आवाज हम सबको पहुंच रही नहीं पहुंच रही है ना। हो सकता हम भान अभिमान में न भी बोले, मुख से कहने के लिए कहे तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी अंतर आत्मा की आवाज का गला मैं नहीं घोट सकती हूँ। 100 लोगों को गलत में सुना सकती हूँ, लेकिन मेरी अंतर आत्मा की आवाज के गले को मैं दबा नहीं सकती। तो अंतर आत्मा की आवाज को सुनो, कौन सा ऐसा संस्कार है पुराना जो मुझे तंग कर रहा है, ठीक है? चेक करेंगे, समय हो रहा है इसीलिए सब चेक करो। अंतरात्मा के वो संस्कार, कड़वापन, कड़ा संस्कार जो मुझे इस ज्ञान मार्ग, इस आध्यात्मिक पद पर ऊंची प्राप्ति के लिए, सर्वोच्च प्राप्ति के लिए वंचित करने वाली चीज कैसी है, कितनी है? तभी तो क्या देखा, हाथी को इतनी छोटी सी चींटी ने मारा। हाथी महारथी को मारने वाली कौन सी, इतनी छोटी सी चींटी, इतनी छोटी सी चीज, चींटी मेरे जन्म जन्मांतर के भाग्य से मुझे वंचित कर रही। तो सबने नोट किया, चेक करें। उसको भी आज बाबा के सामने सौंप करके कहां पहुंचे, सामने कौन खड़ा है हमारे, हाँ सब फरिश्ते। अभी इस गेट को जो क्रॉस करेगा उनके लिए कौन खड़े हैं, हाँ सब फरिश्ते, सब दादियां भी इमर्श करना सभी, ठीक है? अभी लास्ट हम सभी चलिए, अभी फिर अंतर मन की गहराई में चलो। इसके लिए देखो, अपनी जो सूक्ष्म कमजोरी को निकालने के लिए अनहद आवाज को सुनने के लिए क्या होना पड़ेगा, बहुत डीप गहराई में उतरना पड़ेगा। डीप गहराई में उतरेंगे, मुझ आत्मा के अपने नेचुरल नेचर, ओरिजिनल गुण, वो मुझे दिखाई देने लगे। अपने असली गहने, मेरे अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज मुझे दिखाई देगी, तब तो जो मैंने दूसरों की ली हुई चीज को छोड़ पाऊंगी ना। तो अभी हम अंतर मन की आवाज को सुनेंगे, अंतर गहराई में कुछ क्षण के लिए हम सब चलेंगे। कहाँ चलेंगे, ना ते और नहीं जाना, अंदर की तरफ, अपने अंदर की यात्रा, अंदर की यात्रा की ओर कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए मैं एक ऐसी यात्रा पे चल पड़े जो मेरे अंतर मन की यात्रा है। बहुत गहराई में डूब जाए और अंदर अंदर झांक रही हूं अपने आप को, ज्ञान के तीसरे नेत्र से मैं अपने सत्य स्वरूप को देख रही हूं। कितना प्यारा है ये मेरा स्वरूप, ये मेरा निज स्वरूप, बेदाग हीरा, किसी प्रकार का दाग नहीं, यही तो मैं हूं। पावन पवित्र आत्मा, दूसरी ओर देख रही हूं, जिस दाग ने मेरे हीरे के मूल्य को कम कर दिया, आज मैं जौहरी के सामने धोबी के सामने दिल खोलकर अपनी उस सूक्ष्म कमजोरी को बाबा को सुना रहे। इस भट्टी में बाबा रगड़ रगड़ कर मेरे स्माइल को उतार रहे। जौहरी मुझे तराश रहे। मैंने जो अपने सूक्ष्म संस्कार को, कड़े स्वभाव को, कमजोरी को जो महसूस किया, कागज में नोट कर बाबा के हाथ में थमा रही, मानो बाबा ने ले लिया। मैं बिल्कुल हल्की हो गई, बिल्कुल चमकता ही रहा, जैसे मेरा बाबा वैसे मैं आत्मा भी चमकेगी। मेरी चमक बढ़ती जा रही। मैं बाबा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी सूक्ष्म वतन की ओर। आज तो सूक्ष्म वतन हमारे पूर्वजों से सजा हुआ है। सबके हाथ में थाली, हमारे सारे पूर्वज हमारा इंतजार कर रहे हैं। विजय रतन बाबा के आशा के दीपक पहुंच गए, बाबा के उम्मीदों के सितारे कुल दीपक। सब दादियां हमारे मस्तक पर विजय का टीका लगाते थे। सब फरिश्ते मेरा श्रृंगार कर रहे। कोई हार पहना रहा, कोई ताज पहना रहा। मैं सफलता का सितारा, विजय मुहूर्त बाबा की आशाओं का दीपक। सब दादियों से, मम्मा बाबा से विजय का टीका लगाकर, सज धज कर इन सूक्ष्म श्रृंगारों को धारण कर वापिस इस कर्म क्षेत्र पे एक रूहानी योद्धा बन बाबा का हाथ और साथ लेकर विजय बनकर दिखाऊंगी। कर्म क्षेत्र पर जितने भी आंधी तूफान आ जाए, कितने भी पेपर मेरे सामने आए, इस सीन को मैं सामने रखते हुए विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी संकल्प को दोहराते हुए बाबा को दिल से धन्यवाद करें। ओम शांति। एक बार सभी बोलिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी का, हमें सफलता के चार गेट सुनाए बहुत ही सुंदर गेट से। एक बार हम सभी एक ही साथ एक हाथ की ताली से दीदी का धन्यवाद करेंगे। आदरणीय दीदी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, आप ऐसी तपस साधिका हैं, ऐसी शिव साधिका है जिन्होंने शिव को अपना मीत बनाया और शिव की ही प्रीत का गीत गाया है। आप एक ऐसा सहज, सजग, सरल और सफल रूहानी कमांडर है जो अपनी रूहानियत की खुशबू पूरे विश्व में फैलाती है। मैं पहले दिन आई थी, पीछे बैठी, लास्ट में सीट मिली, तो स्पीकर के ऊपर तो ध्यान था ही, पर पीछे से दिख नहीं रहा था, लेकिन आवाज ने इतना प्रभावित किया, मुझे बार बार ये उत्कंठा हो रही थी कि कौन परिचय दे रहा है, मंच संचालन कौन कर रहा है। आपकी योगयुक्त अनुभवयुक्त वाणी, आपके छवि को देखकर ही मन अति प्रसन्न हो गया। साथ साथ मैं कहना चाहूंगी, आपका ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व हम सभी के लिए अनुकरणीय है, प्रेरणीय है। अभी दीदी जब आपका क्लास शुरू हुआ तो हम सब एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, दीदी का परिचय तो दो। तो हमने कहा क्या परिचय, एक दूसरे से कहते लखनऊ से। हमने कहा बाकी परिचय हमको मालूम नहीं है, आप 3 दिन से हमारे साथ हैं और हमने बहुत नाम सुना है कि लखनऊ के राधा दीदी, बहुत दूर तक पानीपत तक नाम सुना हमने आपका, लेकिन हमें मालूम नहीं कि आप कब से ज्ञान में हैं, थोड़ा सा परिचय हम चाहेंगे। नहीं दीदी, अपने परिवार से मिलना भी तो है ना।
ओम शांति। शरीर का नाम राधा बहने, पिछले 42 वर्ष हुआ इस ईश्वरीय ज्ञान में, और जन्म तो दक्षिण भारत का है, दक्षिण में कर्नाटक से मेरा जन्म ही उबली में। तो जन्म लेने के बाद जैसे बाबा के हम बने, मात्र 1 साल हम वहाँ सेवाएं की, मैंगलोर आपने सुना होगा शायद, वहाँ सेवाओं का सौभाग्य मिला। लेकिन दादियों का इतना प्यार स्नेह, खास हमारी चंद्रमणि दादी जी का, और वो एक भक्ति संपन्न परिवार था। हमारे परिवार में अभी भी कम से कम 40-50 लोग ज्ञान में चलते हैं, बेंगलोर में, पूना में, बेलगाम में, हुबली में, US में भी परिवार ऐसे 2 जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से कम से 50 के करीब परिवार, भाई बंधु आदि, 3 बहनें हम पूरे इसे समर्पित होकर के बाबा की कार्य में। मैं लखनऊ में हूँ और 2 बहनें हमारी राजस्थान में सेवाएं कर रहे हैं। तो 1 साल सिर्फ हमने कर्नाटक में सेवा की, उसके पश्चात राजस्थान में 6-7 साल रहे। तो 92 में राजस्थान में मैं थी, तो वहाँ लखनऊ एक मम्मा बाबा का स्थान है, जिस सेंटर पे मुझे भेजा गया और मम्मा बाबा की, मम्मा महीना महीना रह करके सेवा, साकार में बाबा आए थे। तो दादी प्रकाशमणि जी ने मुझे कहा कि आपको लखनऊ जा कर के सेवा करनी है। मैंने कहा दादी लखनऊ तो इतना प्योर हिंदी बोलते हैं, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता। इतना अच्छा मैं नहीं बोल पाती हूँ, और मैं तो कर्नाटक की, कहाँ मुझे आप, वो भी लखनऊ कैपिटल, वो भी हमारी VIP सेवा के लिए मशहूर, वो हजरतगंज सेंटर था, तो उसमें आपको जाना है। तो मैं 1 साल छिप गई, मैं दादी के सामने नहीं आई, क्योंकि दादी मुझे लखनऊ भेजेंगे, मैं अब जाके मैं करूँगी क्या, मुझे बोलना नहीं आता है तो किस लिए जाऊँ मैं वहाँ पे। 1 साल के बाद मैं शिविर की पार्टी लेकर के मधुबन आई थी, बस दादी ने मेरा हाथ कस के पकड़ा, मुझे नहीं पता आपको लखनऊ जाना है। तो फिर हम लखनऊ गए, लखनऊ में 3-3 दादियां रह करके, दादियों की पालना पाई हुए भाई बहने थे, 3-3 दादियों की पालना, और हम तो उस समय में 20-25 साल के थे, वो छोटी उम्र के, वो तो हमारे इस जन्म से भी बड़े बड़े गुलजार दादी को गुलजार दादी नहीं कहते, गुलजार बहन कहते थे। वो इतने इतने दादियों को देखा था उन्होंने, जो सब छोटे छोटे रूप में देखा था दादियों को, मम्मा बाबा के समय के। तो उनके साथ जा करके एक सेवा किया, एक नम्रता से कहो। फिर दादी ने कहा नहीं, वहाँ के भाई बहनों को बोला कहा कि जैसी टीचर हमको चाहिए बाबा ने वैसे हमको भेजा है। इस तरह से हमने तो देखा है कि जब बोलना करना नहीं आता ना, गूंगे बोल लेते हैं, सुना तो है ना, गूंगे जो होते हैं भगवान का बनने के बाद गूंगे क्या हो जाते हैं, बोलने लगते। अंधे क्या होते हैं, देखने लग जाते। वाकई में वो सब मेरे साथ ही हुआ। बोलना नहीं आता था, भगवान ने बोलना सिखाया। देखना नहीं आता था, दुनिया को तो देख लेते थे लेकिन सत्यता को देखने की नजर नहीं थी, वो भगवान ने सिखाया। और बाबा अपनी सेवा के लिए भी निमित्त बनाया। पिछले 35 सालों से मैं लखनऊ में रहकर, विशेष आप सभी जानते हो लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल राजधानी है, और बाबा ने विशेष सेवाएं भी दी है। करण करावनहार तो बाबा है, और उन दादियों की तपस्या का फल है। बहुत अच्छी वहाँ सेवाएं हैं और सेंटर्स भी अपने बहुत अच्छे। एक हमने गुलजार दादी जी, क्योंकि दादी वहाँ रह करके गई है तो संकल्प आया, तो गुलजार दादी जी का याद स्मृति में 3 एकड़ जमीन में, ज़्यादा बहुत बड़ा तो नहीं, 3 एकड़ जमीन में हम लोगों ने भी गुलजार भवन का निर्माण किया है। अभी बस 4-6 महीने में उसका उद्घाटन करेंगे। जैसे आप यहाँ आए ना, वहाँ भी आना जरूर। दीदी
आप इनवाइट कर,
दीदी को मैं कह रही हूँ, बिल्कुल हमारे यहाँ से 1.5 घंटा अयोध्या है। अयोध्या जाने वाले रोड पे ही है, एक तरफ बनारस जाने वाला रोड है और ऐसे टी पॉइंट पे ही है। तो बाबा ने ऐसे, बाबा ने करण करावनहार तो बाबा है, तो 2-3 साल से, सच में दीदी मैं बताऊँ, 3 साल से मैं कोई सेवा में बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम था, जिम्मेवारी थी, इसीलिए हमारे, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से जुड़ी हुई हूँ, उनके कॉन्फ्रेंस में भी किसी में भी सब जगह निमंत्रण में जा ही नहीं रही थी 2 साल से। इस बार जैसे पांडवों का काम, उनका वो सब काम दुनिया के होते रहेंगे, चलो मैं इस बार पहली बार मैं 15 दिन घर से निकल करके, बहुत दिनों के बाद निकल करके आई कि पांडवों ना आऊंगी तो अपनी भी उन्नति रहेगी, नहीं तो वही ईंट गारा सीमेंट बोरी बुद्धि में रहता था। मैं तो कहती हूँ अपना सौभाग्य है, तेरे भाने सर्व का भला कहा गया, भट्टी आपकी ने, मैं तो कहती हूँ मेरी भट्टी हो रही, मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ। आप सबको भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं शाम को भी एक जगह जाना है, फिर कल सवेरे हम उड़ करके अहमदाबाद से जाने वाले, भाई सब दुआएं दे दो कल अहमदाबाद के एयरपोर्ट से जाने वाले हैं, आप सबकी दुआओं के बल से हम ना निश्चिंत और खुश नमा होकर के जाएंगे। ठीक है,
एक छोटा सा प्रश्न भी है दीदी।
जी जी बताइए।
वैसे हम चाह रहे थे हम कुछ एक प्रश्न पूछते, आज एक अनुभवी व्यक्तित्व है, लेकिन ये 84वें एपिसोड का भी क्लाइमेक्स चल रहा है, तो इसमें फास्ट रीति से पुण्य कैसे जमा करें, बिल्कुल फास्ट,
फास्ट गति से,
फास्ट रीति से पुण्य, पुण्य का खाता अगर एकदम फास्ट करना है तो
अच्छा
कैसे करें?
दोनों में फर्क पता है, एक है दान एक है पुण्य। दान किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं? गुड, जो मेरे पास है वो चीज देना वो दान हो गया, सामने वाले को क्या चीज चाहिए वो चीज देना उसको कहा गया पुण्य। इस समय में मैं लास्ट भट्टी में कराया था, एक क्लास कराया था, उसमें मैंने दुआएं देने के ऊपर क्लास क्लियर किया था। बाबा अक्सर कहते दुआएं देना, दुआएं किसको कहेंगे, थोड़ा गहराई से सोच लीजिएगा, गहराई से सोच के जवाब देना, ऐसे किसको किसको कहेंगे दुआएं देना, किसको किसको दुआएं कहेंगे, आप सोच लीजिएगा, कहे तो मैं फिर आप इसको गहराई से सोचना। अक्सर बाबा कहते दुआएं देना, दुआएं का मतलब क्या है, किसी को चीज देना, भावना रखना, क्या भावना रखना, क्या शुभ भावना रखना, क्या कल्याण सोचना। कोई आपके सामने आएगा मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा कल्याण तो नौकरी में, कोई आएगा मुझे मकान मिल जाए मेरा कल्याण तो मकान में, कोई कहेगा मुझे भाई मोबाइल अच्छा वाला मोबाइल मिले मेरा कल्याण तो उसमें। तो किसको दुआ कहेंगे? दुआ की परिभाषा क्या है? मैं थोड़ा सा टाइम हो रहा है इसीलिए एक मिनट, ऐसे भी 12 बजे गोपी बहन की भी क्लास फर्स्ट क्लास क्लास होती, कोई मिस नहीं करना, एकदम इतनी फर्स्ट क्लास गहराई वाली क्लास होती गोपी दीदी की, उसको भी मिस नहीं करना। एक पॉइंट में मैं सुनाऊंगी, इस संसार में हर आत्मा 7 गुणों रूपी बैटरी, हम सब आत्मा रूपी बैटरी है, मोबाइल है, हम सब एक मोबाइल है, हम सब अभी डिस्चार्ज, हर आत्मा इस समय में सिस्टम में आई हुई है, सब डिस्चार्ज मोड पे है। तो हर आत्मा जो चार्ज होती है वो 7 गुणों से, आत्मा के 7 जो नेचुरल नेचर 7 गुण है ना, वो आत्मा को, हर आत्मा को चाहिए, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, आतंकवादी, भक्त, पूजा पाठ करने वाला आत्मा, ज्ञानी, अज्ञानी, हर एक की रिक्वायरमेंट देखो, लास्ट क्वेश्चन उसका पूछो, क्या चाहिए आपको, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, चाहिए वो चाहिए, लास्ट उसका लक्ष्य क्या है, सुख शांति खुश प्रेम आनंद, ये 7 चीजें होती। तो हर आत्मा तक उन 7 गुणों को पहुंचाना, किसी को शांति चाहिए, किसी को प्रेम, बाबा ने भी मुरली में लास्ट 2 सप्ताह पहले कहा था, अमृत वेले आप बाबा से दुआएं ले लो, मैं अपनी बैटरी को फुल चार्ज इन 7 चीजों से भरो और इन्हीं 7 चीजों को स्प्रेड करना, उसमें बाकी सब कुछ समाया हुआ, ये जड़ है, बीज है, ये 7 चीजें हमारे बीज है, उसके अकॉर्डिंग और भी हो सकता, मकान, दुकान, गाड़ी, मोटर, बच्चा, पति पत्नी, जो भी है इससे रिलेटेड ही होते, लेकिन उसका जो जड़ है ना, ये 7 चीजें। तो ये जो पुण्य कहा ना आपने, ये जो पुण्य है हमारा रियल पुण्य, पानी पिलाएंगे तो एक टाइम के लिए पिलाएंगे, अगले पानी के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, खाना एक बार खिलाएंगे, ये जो 7 चीजें हम प्रोवाइड कराना, ये है पुण्य। क्विक चाहे तो इसको फास्ट गति करना, ठीक है। ओम शांति, टाइम हो रहा है, आप सबसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, प्यारे प्यारे बाबा के विशेष रतन हो, लगन वाले हो, मीठे हो, और आप सब ने पूरा फायदा लिया, दीदी से तो मैं रोज मुलाकात, रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट होती है, और सभी बहनों से भी मिल करके संगम युग का ये अलौकिक परिवार, हर कल्प में एक ही तो बार मिलता है इस रूप में, आज सभी से मिल करके बाबा को मैं थैंक्स दे रही हूँ, हमारा भी भाग्य आप सब बाबा के एक एक विशेष रत्नों से, फरिश्तों से मिलने का सौभाग्य मिला। ओम शांति।